Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala khatamun nebiyyin. Amma ba'du, fa'ud billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûnek anissâti eyyâne mursâhâ. Fîmâ ente min zikrâhâ. İlâ rabbika muntahâhâ. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يؤمرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی, تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام, اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے, جو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو, جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے. یہ اصل میں اگر ضروری سوالات جو ہوتے ہیں نا وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ان کو اصل چیز کی طلب نہیں ہے, یا تنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا مذاق کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وقت گزارنے کے لیے ہوتے ہیں, تو ایسے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا, ڈسکریج کیا جاتا ہے. پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاص امتحان کے لیے ہوتی ہے, اگر وہ بتا دیا جائے تو امتحان ختم ہو جائے, تو اس کو بھی نہیں بتایا جاتا. تو موت کب آئے گی اس کا بھی نہیں بتایا جاتا, کیونکہ امتحان کا بنیادی نقطہ ہے. جو شخص جانتا ہو کہ میں کب مروں گا تو سارا عمر عیش کرے گا اور آخر میں یعنی وہ کرے گا, تو وہ تو امتحان نہیں ہوا. یہ ہر آدمی کو جب تک امید ہے کہ میں زندہ رہ سکتا ہوں اس وقت تک وہ توبہ کر سکتا ہے, اور جب وہ امید ختم ہو جائے پھر اگر وہ کرے گا مطلب یہ کہ موت کے آثار نظر آنے لگے تو اس وقت وہ اگر توبہ بھی کر لے تو اس کا توبہ قبول نہیں ہوتا. اسی طرح قیامت کے بارے میں بھی ہے کہ قیامت کے وہ جو آخری آثار جب تک شروع نہیں ہوئے اس وقت تک توبہ قبول ہوتا ہے, اور جس وقت وہ آثار شروع ہو جائے مثلا سورج مغرب سے چڑھا ہے اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوگا, بس It will be the end of the life. تو یہ بات یہاں پر بات کی گئی ہے کہ اس بات کو یعنی ٹکرا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی, تمہارے بات بیان کرنے سے کیا کام, مطلب یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس کا علم اللہ پاک نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اندو علم السا مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا کہ قیامت کب آئے گی, یعنی پانچ چیزوں کا علم اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے. بے ہی ہر دن تموت کب کون سے مطلب جانب زمین پر مرنا ہے اور کب بارش ہوگی, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا علم اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے. ختم علم اندازے بے شک لوگ لگا لیں لیکن ختم علم کسی کے پاس نہیں ہوگا. یہ بعض لوگ بارش کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ اب تو علم ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے پہلے سے بتا دیتے, یقیناً اندازے کی طرح ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بادل آ جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بارش ہوگی, میں نے دا لگا دیا کہ لیکن کیا یقینی بات ہے؟ یقینی بات نہیں ہے, عین بالکل موقع پر پتہ چل جائے گا کہ غلط ہو گیا, چانس کی بات ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ یہاں پر نالئی چڑھا تو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی, بہت تباہی ہوئی تھی پلڈی میں, تو ہمارے ساتھ روحترال کمیٹی کے اجلاس میں موسمیات والے بھی ہوتے تھے, تو ظاہر ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی. تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا یار کمال کرتے ہو تم لوگوں نے صحیح پیشوں کو ہی نہیں کی, لوگوں سے کتنا سارا سامان تلف ہو گیا, کتنی جانے گئی, اگر آپ پہلے بتاتے کہ اتنا خطرناک بارش آنے والے ہیں تو لوگ کم از کم اپنے آپ کو بچاتے. कहते नहीं नहीं ये बर्स्टिंग क्लाउड्स से, बर्स्टिंग क्लाउड्स का पता नहीं चलता, ये बिल्कुल अचानक होता है और बस कुछ जाना बस वो हमें नहीं उसका पता चलता। मैंने कहा अच्छा। अब तकरीबन 3-4 महीने के बाद उन लोगों ने पेशनगोई की कि उसी तरह बारिश होगी, मतलब जो भाई बारिश होनी, तो उस दफ़ा बिल्कुल नहीं हुई। फिर मेरे सामने बैठे थे, मैंने कहा भैया इस वक्त क्या हुआ आपको, तो आपने कहा था कि, तो मतलब ये है कि अब तो कम से कम आपको बता रहे क्यों क्यों मतलब जैन वो नहीं हुई बारिश। तो मेरे मुझे इस तरह हैरत से देखते रहे कि मैं उसको कैसे समझाऊँ। आई तो मैंने कहा कहीं ये तो नहीं हुआ था कि आप लोगों ने बादलों के मूवमेंट का और स्पीड का अंदाज़ा लगाया हो और आपने कहा हो कि बस इतने अरसे में पहुंच जाएंगे और ये काफ़ी बड़े हुए बादल हैं तो ये बरसेंगे और ऐसा होगा और ऐसा होगा। कहते बिल्कुल। मैंने कहा कहीं बिल्कुल आखिरी वक्त में टर्न तो नहीं लिया उसने। कहते एग्जैक्टली इट हैपन। कहते 14 किलोमीटर पर उसने रास्ता बदल लिया था। अब 14 किलोमीटर कौन नाप सकते हैं बादल को, वो तो पता नहीं उनने किस रेफरेंस से बात की है, लेकिन बहरहाल ये कि पता तो नहीं चला ना। तो ये बात है कि बारिशों के बारे में पता नहीं चलता। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बात शादी थी तो मैंने चचा को कहा जो कि आप इंतज़ाम करेंगे टेंट्स का। मेरे चचा काफ़ी खबरदार आदमी थे, अखबार वगैरह और तमाम चीज़ें पढ़ते थे। उन दिनों इतना शौक़ नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन उनका बहुत था, तो सियासत से भी ताल्लुक था। तो खैर ऐसा हुआ कि बारिश हो गई, तो बारिश हो गई तो उन्होंने उससे पूछा भाई टेंट्स किधर है। वो कहते अखबार में तो आया था कि बारिश नहीं होगी। वाले साहब ने उनको सुनाना शुरू किया कि मैं तुम्हें अखबार पढ़ने के लिए बताया था, हाँ मैंने तुझे टेंट्स लाने के लिए कहा आज। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब इंसान को नहीं कुछ पता चलता। तो ये कयामत की खबर और मौत कौन सी ज़मीन पे होगी और ये है कि बारिश कब होगी और में क्या है और पर किस इस किस्म की बात, वो तमाम चीज़ों के बारे में। तो बहरहाल ये है कि ये इम्तिहान है और इम्तिहान इम्तिहान होता है। जिसका इम्तिहान लिया जा रहा है उसको हक नहीं है कि वो पूछे कि कौन सा सवाल आएगा, उसका हक नहीं है। ये पूरा यानी मतलब जिसको कहते हैं ना पूरी दुनिया का उसूल है। हाँ जी, मैं जब जर्मनी से आया तो ज़रा प्यास में, वो पहले हमारे वक्त में ज़रा काफ़ी अदब वगैरह मामला था, फिर बाद में स्टूडेंट्स बेअदब हो गए थे वक़्त के साथ साथ, ऐसे हो जाते हैं। तो मेरा जो शागिर्द था वो टीचर बन गया था, तो स्टूडेंट्स आए थे तो उनसे पूछ रहे थे जी कैसे होगा पेपर और ये होगा फलाना ढिला। तो मैंने जरा तन से कहा, मैंने कहा इसको इनको बता दो कि पेपर में कौन से क्वेश्चन है ये पूछना चाहते। कहते सर एग्जैक्टली हम ये पूछना चाहते। मैंने कहा तो पता नहीं चले। आज तो ये मतलब ज़ाहिर है इस किस्म की बात है, ये इम्तिहान इम्तिहान होता है, इसको इम्तिहान ही समझना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप फजूल कामों में लग जाएँ, इधर उधर की बातें पूछते हो उसे क्या होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा। आप इम्तिहान की तैयारी करें, बस यही बात है। तो मौत के बाद की ज़िंदगी का तैयारी कर लें, और वो कोई ऐसी बात नहीं है, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना। वो हम अब देखो ना, मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर से मैं पूछता हूँ कि नॉर्मल डाइट क्या है, वो तमाम एक्सपीरियंस और स्टडी की बुनियाद पर बताता है कि ये नॉर्मल डाइट है। अब इन मुमकिन है कि आप उसको नॉर्मल डाइट नहीं समझ रहे हो, लेकिन डॉक्टर ने अपने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दिया कि नॉर्मल डाइट है ये। तो इस तरह एक नॉर्मल लाइफ गुजारना ये आपको अल्लाह पाक ही बता सकते हैं कि क्या है नॉर्मल लाइफ, क्योंकि उनको तमाम चीज़ों का पता है, पहले से पता है। तो वो जो बता दे तो उस नॉर्मल लाइफ को तब गुजारे तो उसमें आपको तकलीफ भी नहीं होगी, मतलब आप वाकईतन एक आसान ज़िंदगी गुजारेंगे। क्यों, हमारा नफ्स जो है बेवकूफ़ है, पागल है, तो ये खुद अपने लिए मुसीबतें ढूंढता है। कोई ऐसी चीज़ें खाता है जिससे मुसीबत होती है, ये जितना भी जंक फूड है वो सारे बच्चे भी खाते हैं बड़े भी खाते हैं, उसके साथ फिर मैदे के मसाइल और पता नहीं क्या क्या मसाइल वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, मोटापे के और ये बात। तो इससे फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं ये बंद करो, शाम ये करो वो करो। तो नफ्स को अगर आज़ाद रखो तो ये तो हर दफ़ा मतलब मुँह मारी करता है वो, उसको तो ये नहीं होता कि, इसको तो ये होता है कि बस मज़ा चाहिए। तो इस तरीके से हम अल्लाह पाक की तरफ से जो नॉर्मल ज़िंदगी बताया गया, बस उस ज़िंदगी को गुजारें, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी इंशाल्लाह, आखिरत के बाद भी इंशाल्लाह बड़ी राहत होगी, अल्लाह ताला में नसीब फरमाए। सूरह नाज़िगात पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब इंशाल्लाह अगले दिन सूरह बस शुरू किया जाएगा। अल्लाह जल्ला शानो आप सबको कुरान को तदब्बर के साथ पढ़ने की समझने की तौफीक अता फरमाए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।